Leviticus chapter 9, text, starting with text number 62.
What's on the board? 62?
श्रीचैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 9 श्री चैतन्य महाप्रभु की तीर्थ यात्राएं प्यार संख्या 62 से 64।
So I'll read the previous text to bring us up to 64. कृष्ण बले आचार्य प्रभु रे प्रेम विनय देखिया सकल लोक हाइला विस्मय. When the spiritual master of the Buddhists began to chant the holy name of Krishna and submit to Lord Chaitanya Mahaprabhu, all the people who were gathered there were astonished.
जब वे बौद्ध आचार्य कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने लगे और श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण में आए तो वहां पर एकत्र सारे लोग आश्चर्य से चकित रह गए.
So before we go any further, let's say the Guru Parampara pronounced, please.
दक्षिण भारत में श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ बुद्ध लोगों के साथ तर्क वितर्क कर रहे थे.
This is going back to verse number 15. Verse number 15.
तो अभी प्यार संख्या 50 में इसका वर्णन आता है.
The teachers, teacher of the Buddhist cult set forth the nine principles of philosophy, but Shri Chaitanya Mahaprabhu broke them to pieces with his strong logic.
बौद्ध संप्रदाय के प्रचारक ने नौ सिद्धांत प्रस्तुत किए लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रबल तर्क से उन्हें खंड खंड कर डाले.
51. The all mental speculators and learned scholars were defeated by Shri Chaitanya Mahaprabhu, and when the people began to laugh, the Buddhist philosophers felt both shame and fear.
श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे बौद्धिक चिंतकों तथा पंडितों को हरा दिया और बौद्ध दार्शनिकों पर जब लोग हंसने लगे तो उन्हें लज्जा तथा भय दोनों का अनुभव हुआ.
So, Srila Prabhupada comments that all these Buddhists and other philosophers who were present, they were all atheists actually.
यहाँ श्रीला प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि ये सारे जो दार्शनिक नास्तिक थे.
Text 52. The Buddhists could understand that Lord Chaitanya Mahaprabhu was a Vaishnava and they returned home very unhappy. Later, however, they began to plot against the Lord.
बहुत लोग जान गए कि श्री चैतन्य महाप्रभु वैष्णव है, अतः वे दुखी मन से अपने अपने घर वापस गए। किंतु बाद में उन लोगों ने महाप्रभु के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। तो जो ये कपटी दार्शनिक है, ये जो उनकी पराजय थी उसको वे स्वीकार नहीं कर पाए, जो ईमानदारी से उनको पराजित कर दिया था, तो इसलिए वो षड्यंत्र रचना उन्होंने प्रारंभ किया।
54 Having made their plot, the Buddhists brought a plate of untouchable food before Lord Chaitanya Mahaprabhu and called it Mahaprasada.
षड्यंत्र रचने के बाद बौद्धजन अपवित्र भोजन की थाली श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष ले आए और कहा कि यह महाप्रसाद है।
So actually,
there was some meat on the plate. तो वास्तव में कुछ मांसाहार पदार्थ था उस प्लेट के ऊपर।
54. When the contaminated food was offered to Sri Chaitanya Mahaprabhu, a very large bird appeared on the spot, picked up the plate and its beak and flew away.
वह अछूत भोजन जब ये दूषित भोजन श्री चैतन्य महाप्रभु को लाकर दिया गया, तब एक बड़ा सा पक्षी उसी स्थान में प्रकट हुआ और थाली को अपनी चोंच में दबा ली और उसे लेकर उड़ गया।
So the bird picked up the plate.
तो उस पक्षी ने उस प्लेट को उठा लिया।
55 Indeed, the untouchable food fell upon the Buddhist, and the large bird dropped the plate on the head of the chief Buddhist teacher. When it fell on his head, it made a loud sound.
वह अछूत भोजन उन बौद्धों के ऊपर गिर पड़ा और उस बड़े पक्षी ने वह थाली उस प्रमुख बौद्धाचार्य के सिर के ऊपर गिरा दी। जब वह उसके सिर पर गिरी तो बड़े जोर की आवाज हुई।
56 The plate was made of metal, and when his edge hit the head of the teacher, it cut him. And the teacher immediately fell to the ground unconscious.
थाली धातु की बनी थी, अतः जब उसकी धार उस आचार्य के सिर पर लगी तो घाव हो गया, फलतः वह आचार्य तुरंत बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ा।
57 When the teacher fell unconscious, his Buddhist disciples cried aloud and ran to the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu for shelter.
जब आचार्य बेहोश हो गया तो उसके सारे शिष्य जोर जोर से रोने लगे और शरण पाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की ओर दौड़े। तो हम यहाँ पर उदाहरण देखते हैं कि उनको इतना ज्यादा दर्दनाक अनुभव हुआ, इससे वो इतने पीड़ित हुए और इसके कारण वह परम भगवान के चरण कमलों की उन्होंने शरण ग्रहण की।
So they could understand by this occurrence of the plate falling, the bird appearing out of nowhere, picking up the plate and crashed down and cut the head of their guru, and they fell unconscious. Then they could understand that, oh, this is some mystic demon, this Mahaprabhu is a mystic, and we're messing with the one person. They could understand, actually. Krishna, his Mahaprabhu had this mercy, he appeared as in the form of intelligence.
तो जब ये घटना हुई कि ना जाने कहां से वह पक्षी आया, प्लेट उठाई और उनके जो आचार्य हैं उनके सर पर गिरा दी, तो इससे उन्हें लगा कि ये कोई बहुत ही रहस्यमय घटना है और हम शायद गलत व्यक्ति से पंगा ले रहे हैं। तो महाप्रभु की कृपा से उनको ये बुद्धि उनके अंदर जागृत हुई।
In other words, out of his mercy, the Lord arose in their contaminated hearts as intelligence.
तब वो सारे शिष्य जोर-जोर से रोने लगे और शरण पाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की ओर वो दौड़े।
So from demons, they suddenly become a little bit surrendered.
तो आसुरी प्रवृत्ति से वे कुछ शरणागत हुए थे।
This is our movement.
यही हमारा आंदोलन है।
Everybody sitting here was a demon at one time or another.
यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं किसी ना किसी समय पर
आसुरिक bad habits, different levels of bad habits, and nobody was really a saintly person until they took up Krishna consciousness.
बुरी आदतों के अलग-अलग स्तर पर था जब तक उसने कृष्ण भावना में स्वीकार नहीं किया.
This is the infant mercy of Srila Prabhupada, and he passes that on by empowering his representatives.
तो ये श्रीला प्रभुपाद की कृपा है जो वो आगे इसको फैला रहे हैं अपने प्रतिनिधियों को.
Of course, most of you were vegetarian. I think almost all of you were vegetarian because this is India.
मैं अपेक्षा करता हूँ शायद आप में से अधिकतर भक्त शाकाहारी थे क्योंकि भारत भूमि है.
But in the West, you know, a lot of people can go in the West straight from being meat eater to devotee without even passing through being a vegetarian. But usually, our best customers, Prabhupada, this is a customer, refer to people that we recruit as customers.
तो परंतु पाश्चात्य देशों में जहाँ अधिकतर लोग मांसाहार करते हैं वो सीधे वैष्णव बन जाते हैं इस आंदोलन के संपर्क में आने से बिना शाकाहारी की स्टेज पास किए हुए डायरेक्ट सिर्फ भगवान को अर्पित हो जाते
हैं. So in the West, the people that take up Krishna consciousness, usually they have become vegetarians first, but there are exceptions. Sometimes somebody can go straight from meat eater to devotee, you see, in the same way we see from this example of Chaitanya Prabhu.
तो देखते हैं कि पाश्चात्य देशों में जो लोग हैं मांसाहार से पहले शाकाहार बनते हैं परंतु कुछ एक्सेप्शन होते हैं कुछ सीधे वैष्णव भी बनते हैं.
So we should not underestimate the power of the mercy of Mahaprabhu.
हमें महाप्रभु की जो कृपा है उसका काम उसको काम नहीं आंकना चाहिए.
Then our own Srila Prabhupada and then his representatives also are fully empowered by that shakti of Mahaprabhu. So then that's what gives potency to this movement.
So Prabhupada aur Prabhupada ke pratinidhi mein hi utni shakti se hum empowered hain to isliye hame is andolan ki shakti ko kam nahi aankhna chahiye.
So we should try to appreciate the deep purport of this pastime.
To hame isse iska prachar karna chahiye is tarah par.
These pastimes of the Lord are always designed to teach.
परम पुरुषोत्तम भगवान की जितनी लीलाएं हैं वो इस तरह आयोजित की जाती हैं कि जिससे उनको शिक्षा मिल सके.
That's true of Krishna, it's true of Ram, it's actually all the incarnations, Brahma, Nrsimha. They're all because the Supreme Personality of Godhead is Adi Guru. So that means he's always teaching. By his lila, he's teaching also. So we are supposed to catch that. If we don't catch that, we have missed the whole point of Krishna consciousness.
परम पुरुषोत्तम भगवान आदि गुरु हैं और वो हमें प्रत्येक अपने कार्य से कृष्ण को शिक्षा दे रहे हैं और यही सत्य है. जय वो कृष्ण है राम है वराहदेव है भगवान के जितने अवतार हैं तो उन लीलाओं से हम क्या शिक्षा ले सकते हैं हमें इसको पकड़ना है. अगर हम इसको नहीं पकड़ पाते तो पूरे कृष्ण भावनामृत का जो केंद्र बिंदु है हम उससे चूक जाएंगे.
So in this pastime we see demons instantly becoming converted, instantly caused by force to surrender to Mahaprabhu, by force, not by philosophy. They were defeated philosophy and they were envious and angry, but now by mystic force, Mahaprabhu, he forces them to surrender. This is our movement. I mean, we don't force people to surrender. The point is that the mercy of Mahaprabhu, even a twisted arm of rotten souls, so that they can surrender to this mission.
तो यहाँ देखते हैं महाप्रभु ने कैसे डंडे की जोर पर उनको शरणागत कराया. हालांकि पहले उन्होंने हमें दर्शन में पराजित कर दिया और परंतु फिर भी वे नहीं माने. तो कई बार देखते हैं कि महाप्रभु जो बद्ध जीव है उनका कभी कभार बाजू मरोड़ते हैं उनको इस आंदोलन में शरणागत कराने के लिए.
So they were all demons, hardcore demons, envious of the Lord, angry, plotting demoniac plot.
देखते हैं
कि वो प्लेट ऑफ मीट, यू नो.
तो देखते हैं वो सभी जो यहाँ पर लोग हैं घोर असुर प्रवृत्ति के थे कैसे भगवान से द्वेष कर रहे थे. इस प्रकार का उन्होंने षड्यंत्र रचा और एक प्लेट पर मांस का टुकड़ा रखते हुए कहा कि महाप्रसाद है.
Then only minutes later, by the mystic power of the Lord, they're suddenly forced to surrender.
और कुछ ही मिनटों में देखते हैं महाप्रभु की अचिंत्य शक्तियों के द्वारा किस प्रकार वो शरण ग्रहण करने पर मजबूर हुए.
So demons to somewhat surrender souls in minutes only, that's Mahaprabhu.
तो जो घोर असुर थे कुछ ही मिनटों में वो कुछ शरणागत हुए, ये महाप्रभु की कृपा है.
It's important that you get, so why, you know, what is the acting principle then?
आप पूछ सकते हैं क्या यहां पर कौन सी शक्ति कार्य कर रही है, कौन सा सिद्धांत कार्य कर रहा है.
The acting principle is that Mahaprabhu is Radhika.
जो सिद्धांत जो यहां कार्य कर रहा है वो ये है कि महाप्रभु वास्तव में श्रीमती राधा रानी के भाव में है.
He is the personification of her love, of her mercy, of her tenderness. That's who Mahaprabhu is. Not just, you know, sannyasi devotee, no.
वो राधा रानी के कृपा, उनके जो प्रेम है, उनकी जो करुणा है, उनके मूर्तिमान स्वरूप है.
So, therefore, we see how Mahaprabhu is Ladini Shakti personified, and the whole pastime is arranged under Ladini Shakti.
Ladini Shakti ke vyaktitva hai. और देखते हैं कैसे जो लालनी शक्ति के अंतर्गत पूरी की पूरी लीला रची गई.
So Mahaprabhu was also Krishna, so Krishna is Yogeshwar, the supreme mystic. So here we see that he's using his mystic power to help some demons surrender, and they're forced to surrender really quickly. It was certainly not their intent to surrender, but suddenly, seeing the mystic power of the Lord, suddenly, therefore, they surrender because they realize, oh no, we're up against some superpower. Okay, we surrender.
And Mahaprabhu Krishna hai, aur Krishna Yogeshwar hai, aur jo Yogeshwar hai, apni yogic shaktiyon ka unhone istemal kiya, aur tabhi hum dekhte hain ki kuch hi minuton mein, halanki unki aisa koi bhi uddeshya bhavna nahi tha sharanagat hone ka.
So we have to get the context here, the context we have to get.
To hume yahan par sandarbh samajhna chahiye iska.
That they're demons, hardcore demons, offering a plate of meat to the Supreme Lord, and then moments later, they surrender.
तो घोर असुर प्रवृत्ति के लोग भगवान को एक प्लेट के अंदर मीट अर्पित कर रहे हैं और कुछ ही मिनटों के बाद शरणागत हो जाते हैं.
Really fast.
बहुत तेजी से ये सब हुआ.
So this is why I'm just stressing on this point. They're total demons trying to, you know, contaminate the Lord with a plate of meat. And then moments later when they see that their guru is like down and cut on the head, and then they realize, oh my God, you know, we're up against some superpower, forget it, we're going to surrender.
तो देखते हैं कैसे वो भगवान को दूषित करने का प्रयास करते हैं एक मीट उनको अर्पित करके, परंतु फिर देखते हैं कि जो भी घटना हुई उनके खुद के गुरु बेहोश पड़े हैं, उनके सर पर घाव है, तो लगा नहीं नहीं तो तुरंत शरणागत होते
हैं.
इसको समझने का प्रयास कीजिए कितना अद्भुत है, और ये समझने का प्रयास कीजिए कि ये राधिका की कृपा है.
I'm trying to emphasize hardcore demons intending to do harm to the Lord, you know. And then moments later, I'm just the build up for text number 58, which is leading into where we're going here.
तो मैं इस बात पर बल बार बार इसलिए दे रहा हूँ कि ये प्रसंग आपको समझ आए कि पूरे घोर असुर लोग जो भगवान को कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और कैसे वो उनमें परिवर्तन आता है, वो शरणागत होते हैं.
So practically they just attack the Lord with a demoniac plan. And then moments later, next we'll see what happens next. After this mystic display, instant surrender. So we have to get the context here. They're hardcore demons, and then after the mystic display, next verse 58, we'll see how they suddenly surrender because they realize, whoa.
तब व्यवहारिक रूप से हम देखते हैं कि उन्होंने भगवान पर किस प्रकार से आक्रमण किया, और अभी हम जो श्लोक प्यार संख्या 58 में देखेंगे किस प्रकार से उन्हें एहसास होता है कि ये परम पुरुषोत्तम भगवान है, तो उन्हें लगता है नहीं नहीं हम इनसे
dramatizing here about the, you know, from night to day is what we're talking about in terms of the mood of the from demons to devotees. within moments, this is astonishing.
तो मैं यहाँ पर उनके जो भाव है उन पर बल दे रहा हूँ कि कितना अद्भुत है, जैसे रात से दिन होना, कैसे उनके भाव बिल्कुल असुरित थे और फिर वो तुरंत शरणागत होते हैं।
So this is all build up to text number 58.
तो ये प्यार संख्या 58, 58 की ओर ले जाती है जिस दिशा में हम जा रहे हैं।
Now watch the contrast now from demons to devotees within seconds.
तो अब आप इसकी तुलना कीजिए कि कितना उनके अंदर भेद आ गया, असुर से पूरे वैष्णव बन गए, भक्त बन गए।
Text 58. They all prayed to Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, addressing him as the Supreme Personality of Godhead himself. And you see, look at the change now. From envious demons to acknowledging, oh my God, he's the Supreme Personality of Godhead, we surrender. Within moments. That's Mahaprabhu.
कुछ ही क्षणों में वो द्वेषी असुर से कैसे भक्त बन गए, शरणागत हो गए, प्रार्थना कर रहे हैं, ये है महाप्रभु।
So they said, Sir, please excuse our offense. Please have mercy upon us and bring our spiritual master back to life.
उन सब ने श्री चैतन्य महाप्रभु को साक्षात भगवान संबोधित करते हुए कहा, कृपया हमारा अपराध क्षमा करें, हम पर कृपा करें और हमारे गुरुदेव को जीवन दान दें।
The Lord then replied, 59, to the Buddhist disciples, he said, You should all chant the name of Krishna and Hari very loudly near the ear of your spiritual master.
तो महाप्रभु ने बौद्ध शिष्य से कहा, तुम सभी मिलकर अपने गुरु के कान में जोर से कृष्ण तथा हरि के नामों का उच्चारण करो।
By this method, your spiritual master will regain his consciousness.
प्यार साठ, इस तरह से तुम्हारे गुरु को चेतना प्राप्त होगी।
Following Sri Chaitanya Mahaprabhu's advice, all the Buddhists, you see, they all surrendered. All the Buddhist disciples began to chant the holy names of Krishna congregational. Just see, envious demons, angry demons, real demons, trying to harm the Lord, to surrender and chanting the holy names within moments.
श्री चैतन्य महाप्रभु का परामर्श मानकर वे सारे बौद्ध, देखिए लिखे सारे के सारे वहां जितने बौद्ध शिष्य उपस्थित थे, कृष्ण के पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन करने लगे। तो कैसे पूरे जो द्वेषी बिल्कुल असुर, वास्तविक असुर थे, कैसे तुरंत भक्त बन गए।
So text 61, when all the disciples chanted the holy names of Krishna, all the disciples, I mean nobody was holding out. On being a demon, they all surrendered on the spot. They all began chanting the holy names of Krishna, Rama, and Hari.
The सारे शिष्य, यहाँ लिखा है सारे, कि कोई भी इसमें से चूक नहीं था, सारे शिष्य कृष्ण, राम तथा हरि के पवित्र नामों का कीर्तन करने लगे।
The Buddhist teacher regained consciousness and immediately began to chant the holy name of Lord Hari.
तो बौद्ध आचार्य की चेतना वापस आ गई और वह तुरंत ही हरि नाम का कीर्तन करने लगा।
By the mercy of Mahaprabhu, he goes from total envious demon misleading all his disciples and all this to becoming devotee chanting the holy name, instant mercy. You see?
Mahaprabhu ki kripa se kaise unki jo dreshi mansikta thi, turant hi wo bhakt ban gaye, sharanagat ho gaye.
Now get this. The commentary by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur.
To jo tatpare hai Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dara.
So they were demons, keep in mind, they were demons. They were not devotees, they were not innocent, they were not, you know, university students that you're trying to make into IYF course, you know, no. They were hardcore demons.
तो वो पूरे असुर थे।
But the next thing that Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur points out is that all the Buddhist disciples were actually initiated by Sri Chaitanya Mahaprabhu into the chanting the holy name of Krishna, and when they chanted, they actually became different persons.
Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur tika karte hain ki vastav mein Sri Chaitanya Mahaprabhu ne sare baudh shishyon ko Krishna ke pavitra naam ka kirtan karne ke liye dikshit kar diya, aur jab ye kirtan karne lage to vah vastav mein bhinn vyakti ban gaye.
At that time they were not Buddhists or atheists, but Vaishnavas.
Us samay mein baudh ya nastik nahi rahe, apitu Vaishnav ban gaye.
Instant conversion here.
हम यहाँ बता रहे हैं कैसे तुरंत परिवर्तन।
So they, consequently, they immediately accepted Sri Chaitanya Mahaprabhu's order.
उनकी फलस्वरूप उन्होंने तुरंत श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा मान ली.
So their original Krishna consciousness was revived, and they were immediately able to chant the Hare Krishna and begin worshiping the Supreme Lord Krishna.
उनकी मूल कृष्ण भावना जागृत हो उठी और वे तुरंत हरे कृष्ण का कीर्तन करने लगे.
So then text 62. So this is a miracle, that's good. Because the mercy of Mahaprabhu was a miracle, actually. And the mercy passed on, empowered Satyavishavatara Srila Prabhupada, is also a miracle. And the fact that he passes on that avesh empowerment to his disciples is also a miracle.
तो यहाँ देखते हैं महाप्रभु की जो कृपा है कैसे इतना बड़ा चमत्कार है और महाप्रभु की कृपा जो पास की गई है श्रीला प्रभुपाद के माध्यम से वो भी चमत्कार है शक्ता वे शक्ता है और श्रीला प्रभुपाद ने जो अपने प्रतिनिधियों को आगे कृपा दी और उनके माध्यम से जो चमत्कार हो रहे हैं वो भी अद्भुत है और श्रीला प्रभुपाद के शिष्य आप अपने शिष्यों को ये आवेश आगे पास कर रहे हैं
Become empowered preachers to spread Krishna consciousness.
जो कृष्ण भावना में तो फैलाने के लिए सशक्त प्रचारक बन रहे हैं.
So this is a continued miracle.
तो ये चमत्कार है निरंतर चमत्कार हो रहे हैं.
Because this movement is a living pastime of Mahaprabhu, try to understand. And Prabhupada is inside that living pastime, and we are also inside that living pastime, but we have to open it.
क्योंकि ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक जीता जागता लीला है श्री चैतन्य महाप्रभु की और श्रीला प्रभुपाद इस लीला के अंदर उपस्थित हैं और हम सब भी इस लीला के भागीदारी हैं हम इस पर भाग ले रहे हैं हमें बस अपनी आंखें खोलनी है इसको समझने के लिए देखने के लिए
So text 62 When the spiritual master of the Buddhists began to chant the holy name of Krishna and submitted to Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, all the people who were gathered there were astonished.
जब बौद्ध आचार्य कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने लगा और श्री चैतन्य महाप्रभु के शरण में आ गया तो वहां पर एकत्रित सारे लोग आश्चर्य से चकित रह गए.
So generally in those days when there was a philosophical debate, a crowd would gather.
उन दिनों जब भी कोई दर्शन पर डिबेट होती थी तो पूरा का पूरा भीड़ वहां पर जमा हो जाती थी.
There was no television, so they couldn't watch cricket games.
उस समय टीवी नहीं था तो इसलिए वो क्रिकेट नहीं देख सकते थे.
And because there was no television, they couldn't watch this election results and other kinds of stuff that people do these days.
और उस समय टीवी नहीं था तो इसलिए जो इलेक्शन रिजल्ट और इत्यादि जो आजकल जिसमें लोग लगते हैं वो भी नहीं देख सकते थे.
So what was the recreation?
तो उनका मनोरंजन क्या था?
Philosophical debates.
दर्शन पर तर्क वितर्क करना.
Well, nowadays, up to 50,000 people can crowd into a cricket stadium, right?
आज के समय एक क्रिकेट स्टेडियम में शायद 50,000 लोग वहां पर एक साथ एकत्रित हो सकते हैं.
In those days, the same number of people might gather together to hear a good philosophical debate. Then, you know, they didn't have a stadium, but somehow or other they would gather together and somehow they would able to understand what was going on in a philosophical debate.
और उस समय शायद इतने ही लोग एक जगह इकट्ठा होकर जो वहां पर डिबेट हो रहा है उसके लिए एकत्रित होते थे हालांकि वहां स्टेडियम नहीं होता था परंतु इतने लोग इकट्ठे होते थे और समझ पाते थे कि क्या बातचीत हो रही है.
The Dharma Mahaprabhu, the world headquarters for philosophers, was not a great
उन दिनों जितने भी दर्शन थे दार्शनिक लोगों का जो मुख्य हेडक्वार्टर था पूरे संसार में वो नवद्वीप था.
So all the philosophers in the world in those days meant India. It didn't mean Europe was just a bunch of, you know, primitives. I mean, running around. I mean, maybe there was something going on with fallen kings, you know, and Vikings with their helmets, you know, whatever. There were kings. By the time Mahaprabhu was on the planet, but the whole thing was very fallen.
तो समय विश्व का अर्थ मुख्य भारत ही होता था क्योंकि बाकी जितने देश हैं यूरोप वगैरह में वो तो बहुत ही पिछड़े देश होते थे उस समय जो इधर उधर वहां के लोग भाग रहे होते थे.
Maybe the Vikings or something earlier, but Point is that it was called by historians the Dark Ages in Europe. It was not culturally developed. They were in Maya.
तो उस समय वो उनकी जो सभ्यता थी इतनी विकसित नहीं थी माया में थे.
Renaissance in Europe took place. Renaissance means the revival. It took place because of the presence of Mahabhu on the planet. You see, his lotus feet on the planet caused a resurgence of culture and some semblance of civilization in Europe. You see.
और यूरोप में रेनेसेंस महाप्रभु की उपस्थिति से आया क्योंकि उनके चरण कमल इस पृथ्वी पर उपस्थित थे तो इसलिए वहां की संस्कृति में पुनः थोड़ा विकास हुआ.
So in nowadays there's the philosophical debate. So some big shots who come, big philosophers come riding in on elephants, you know.
तो समय बड़े-बड़े दार्शनिक लोग हाथी पर सवार होकर वहां नवद्वीप में आते थे.
But sometimes they would be defeated.
और कभी-कभार वो पराजित भी होते थे.
Of course, Nimai Pandit would defeat all of them.
और निश्चित रूप से निमाई पंडित तो सभी दार्शनिकों को एक साथ खड़ा कर दिया जाए तो भी उनको पराजित कर देंगे.
Chaitanya Mahaprabhu describes that the defeated party was driven into the Ganga. Yes. The defeated party was driven into the Ganga with sticks and stones by the winners. I mean, this was their recreation.
तो चैतन्य भागवत में वर्णन आता है कि ऐसा दार्शनिक जो पराजित हो जाए उसको लोग पत्थर और छड़ी मार मार कर गंगा की ओर ले जाते थे उसमें डुबोने के
लिए. They run for their lives.
और उनको अपनी जान बचा के भागना पड़ता था. ये चैतन्य भागवत में इसका वर्णन है.
So,
ये समय का मनोरंजन था.
So, the point is that when there was a philosophical debate taking place between Mahaprabhu and all these atheists and Buddhists, there was a crowd, and when the crowd saw the surrender of the Buddhists, when they saw them with their own eyes and ears, when they saw that the Buddhists were surrendering to Mahaprabhu, so therefore they were struck with wonder, they were astonished.
और जब वहाँ एकत्रित सारे लोगों ने अपनी आँखों से देखा कि कैसे बौद्ध आचार्य और उनके शिष्य श्री चैतन्य महाप्रभु को शरणागत हो रहे हैं तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए.
So that that is the completion of that particular pastime.
तो इस लीला का यहाँ पर इसकी लीला पूर्ण होती है.
But it became all the devotees. So everybody there became devotee on the spot. Where was everybody? Observers obviously would become devotees also, as well as the Buddhist demons became devotees. So wherever Mahaprabhu went, even demons became devotees.
तो उसी समय तुरंत वहां पर जितने एकत्रित लोग थे बौद्ध तो वैष्णव बने ही वहां पर जितनी भीड़ इकट्ठी थी वो सब भक्त बन गए और यही महाप्रभु का उद्देश्य था. कहीं भी जाते थे जो लोग हैं वो वैष्णव में परिवर्तित हो जाते थे.
In the West, we see that in the history of the movement, sometimes there would be some demons who would, maybe throw some tomatoes at the devotees or something like that and harass them verbally and so forth. Demons.
इस आंदोलन के इतिहास में भी हम देखते हैं विशेषकर पाश्चात्य जगत में ऐसे लोग थे असुर थे और कभी भक्त जाते थे उन पर वो टमाटर वगैरह फेंका करते थे.
But at least one case, by associating with devotees and hearing the holy name, such a demon became purified.
परंतु मैं एटलीस्ट कम से कम एक ऐसा केस जानता हूं कि जिसमें जो ऐसा व्यक्ति व्यवहार कर रहा था वो भक्तों की किसी तरह संग में आया भगवान के पवित्र नाम सुनने से उसने शिला प्रभुपाद को अपने आप को समर्पित किया.
So we see how Srila Prabhupada was carrying on the pastime of Mahaprabhu from demon harassing the devotees, bad language and throwing maybe rotten tomatoes or something to surrendering to Prabhupada. So that is the Shakti of Mahaprabhu.
तो हम देखते हैं कैसे शिला प्रभुपाद महाप्रभु की सारी लीलाओं को आगे कैरी कर रहे हैं और इस घटना में भी तो कैसे वो एक व्यक्ति था असुर था भक्तों को अपशब्द कहता था उन पर टमाटर फेंका करता था परंतु महा शिला प्रभुपाद की कृपा से वो शरणागत हुआ वैष्णव बना. मुझे उसका नाम नहीं पता याद नहीं है.
But even more astonishing is later on, that same person, after surrendering Prabhupada, become a sannyasi.
तो मेरे को उसका नाम याद नहीं है परंतु इसमें और अधिक आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि वो आगे चलकर एक सन्यासी बना इस संबंध को समझने का प्रयास कीजिए जो शिला प्रभुपाद है 100% महाप्रभु के आवेश को लेकर चल रहे थे
एंड फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड विदाउट एनी मटेरियल बॉडी ही स्टिल फुली कैरिंग द आवेश ऑफ महाप्रभु एंड वी आर स्टिल टेकिंग द बेनिफिट एंड द डिवोटीज इन दिस मोमेंट वर प्रीचिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस आर स्टिल बीइंग एम्पावर्ड बाय शिला प्रभुपाद फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड आई डोंट अंडरस्टैंड
और आध्यात्मिक जगत से हालांकि उनका कोई भौतिक देह नहीं है आध्यात्मिक जगत से अभी भी वर्तमान में वो श्री चैतन्य महाप्रभु के आवेश को कैरी कर रहे हैं और इस आंदोलन के भक्त उनके इस आवेश का उनके उपस्थिति का लाभ उठा रहे हैं उठा सकते अगर ऐसा नहीं होता तो यह आंदोलन अब तक पूरा ढह जाता
so what's 2017 take away 1977? What is it? Who's good at math in their brain? I'm not good at math in
that. 1977 to 2017, kitne varsh hue?
Punch it up. 2017. 40 years? So Srila Prabhupada left the planet 40 years ago, and the movement is still going strong. That's only possible by his avesh. That's a fact. Otherwise, absent his avesh, this movement would have collapsed long ago.
Srila Prabhupada is prithvi se prakat hue 40 varsh pur. Aur abhi 40 varsh tak ye andolan aage chal raha hai, vistar ho raha hai. Ye sirf aur sirf Srila Prabhupada ke avesh ke karan hai. Nahi to bahut pehle ye andolan khatm ho jata.
So, then text 63. So this was the completion of Mahaprabhu's pastime with the demoniac Buddhists who became converted to the actual devotees, real devotees, instant devotees.
तो यहाँ पर एक लीला का समापन होता है कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने जितने भी बौद्ध वर्ग के लोग थे उनको वैष्णव में परिवर्तन किया असली में वैष्णव बने
Text 63. Sri Chaitanya Mahaprabhu, the son of Satyadev, then suddenly and playfully disappeared from everyone's sight. And it was impossible for anyone to find him.
तब सच्ची देवी के पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु सहसा आंखों से नाटकीय ढंग से ओझल हो गए और उन्हें कोई ढूंढ नहीं सका
So now 64.
तब प्यार संख्या 64 रिपोर्ट पर है
महाप्रभु चले आए ना त्रिपति
त्रिमाले
महाप्रभु चले अला तिरुपति त्रिपति
श्रीमालयुज
मूर्ति देखी वेंकट चले महाप्रभु चले आया श्रीपति श्रीमालय चतुर्भुज मूर्ति देखी वेंकटम जी चले महाप्रभु चले आया श्रीपति श्रीमालय चतुर्भुज मूर्ति देखी वेंकट जी मर चले दिस वर्ड इज ट्रिकी वेंकट जी इट्स ट्रिकी वर्ड
ये जो शब्द बड़ा रहस्य है
वेंकट जी
वेंकट आद्रिय
वेंकट आद्रिय
Drip,
drip. D-R-Y-E, so it's tricky. It's a tricky to pronounce. So, Venkatavyacharaya. One more time. Bahavaku charaya ayana tirupati tripati tripare.
Bahavaku charaya tripati tripare.
Katapuja murti deki Venkatavyacharaya.
Katapuja murti deki.
क्या आपको पता है जो बालाजी है इस पृथ्वी पर सबसे पुराने विग्रह है.
It is said that he was from a prior yuga before the great pralaya. In other words, before the flood that comes at the end of the millennium and goes up to all the way to Brahmaloka, the bottom of Brahmaloka and the devas are then on the seashore, so to speak, and then it goes down. And this happens every night.
तो बताया जाता है कि ये जो विग्रह है पिछले युग से हैं, जब वहां प्रलय आती है ब्रह्मा जी के दिन के अंत में, इससे पहले के विग्रह है.
So Balaji survived the great pralaya.
तो जब बालाजी थे तो ये महाप्रलय
में, the oldest deity on the planet.
इसलिए इस पृथ्वी पर ये सबसे पुराने विग्रह है.
So also everybody knows yourself manifested.
ये खुद ही प्रकट हुए.
But what you might not know is that Balaji originally had two arms.
जो चीज आपको शायद ना पता हो वो ये है कि बालाजी के जो जो सबसे पहले विग्रह थे उनके दो हाथ थे.
But Ramanujacharya, he went there and he, his bow is Lord Narayan or to that, you know, Aishwarya bow formality. So he requested Balaji, you please show forearm for him.
परंतु जब रामानुजाचार्य वहां पर गए तो उनका भाव वो जो आराधना करते हैं नारायण रूप में करते हैं ऐश्वर्य भाव में, तब उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि आप चतुर्भुज को प्रकट कीजिए.
So out of love, Balaji added two arms.
और बालाजी ने प्रेम पूर्वक दो भुजाएं और प्रकट की.
They're not man-made, It's not like an artist, you know, carved out two arms and they pasted it on.
तो ऐसा नहीं है कि उनके जो चतुर्भुज ये जो रूप है इसकी कोई रचना किसी मनुष्य ने की नहीं.
The rasa of the Lord and devotees, the Lord will serve the devotees. We see this all throughout the shastra.
तो हम यहाँ पर रस देखते हैं भगवान और उनके भक्तों के बीच में. भगवान हमेशा अपने भक्तों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं.
So then Mahaprabhu proceeded towards Venkata Hill.
तत्पश्चात वे वेंकट पर्वत की ओर चल पड़े.
So Tirupati, where our Radha Govinda Asachagi temple is down at the bottom of the hill.
जो तिरुपति में इस्कॉन का राधा गोविंद अष्ट सखी मंदिर इस पर्वत के नीचे है.
It is said that the mountain, the Tirumala, is the mountain basically, or the, there's a small there's a village at the top of the mountain.
जो तिरुमल यहाँ पर है ये जो पर्वत के ऊपर वहाँ पर एक छोटा गांव है उस स्थान को कहते हैं. ये भी बताया जाता है जो पर्वत है वो अनंत शेष का रूप है. अगर आप उस पर्वत को देखेंगे तो उसमें अलग अलग प्रकार के लेयर्स हैं जैसे एक सर्प के अलग अलग.
So therefore, you know, it was no big deal that he was there, you know, what is it, 530 years ago now, how many years is it now?
Huh? This year is celebrated
531. So it was no big deal that Balaji was there 531 years ago because he's such an ancient, practically he's millions of years old.
तो उस लगभग 500 वर्ष पूर्व भी जो बालाजी के विग्रह वहां पर उपस्थित है.
So the purport by Srila Prabhupada, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakura has actually described the chronological order of Lord Chaitanya Mahaprabhu's visit.
Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakura ने वास्तव में महाप्रभु की यात्रा का क्रमबद्ध वर्णन किया है.
The Tirupati temple is sometimes called
तिरुपति मंदिर को कभी कभी तिरुपटूर कहा जाता है.
It is situated on the northern side of Arcot in the district of Chandragiri.
ये चंद्रगिरी जिले में आर्कट के दक्षिण की ओर स्थित है.
It is the famous holy place of Gilgamesh.
ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है.
In pursuance of his name, Venkateshwar, the four-headed Lord Vishnu, the deity of Balaji, with his potencies named Shri and Bhu, is located on Venkata Hill, about 8 miles, so that's about, what, 16 kilometers, right? Yes?
20
kilometers.
20 kilometers.
13
kilometers.
13 kilometers. So,
Venkateshwar,
13 kilometers from Tirupati. So Tirupati is down at the bottom of the mountain, and then apparently it's 13 kilometers up to the top of the hill.
Venkateshwar, Chaturbhuj Vishnu ke roop mein Balaji ke arch vigraha hai. Jo apne naam ke anurup, Shri tatha Bhu namak apni shaktiyon samet, Tirupati se lagbhag 8 mil, yani 13 kilometer duri par, Venkat parvat par sthit hai.
This Venkateshwar deity is in the form of Lord Vishnu, is the form of Lord Vishnu, and the place where he is situated is known as Venkateshwara.
Ye Venkateshwar Archvigraha Bhagavan Vishnu ke roop mein hai, aur vah sthan jahan par sthit hai, Venkateshwara kehlata hai.
There are many temples in southern India, but this Balaji temple is especially opulent.
Yadyapi Dakshin Bharat mein anek mandir hai, किंतु बालाजी का यह मंदिर अत्यंत वैभवशाली है.
A great fair is held there in the month of Ashwin of September, October.
यहां पर अश्विन मास यानी सितंबर अक्टूबर मास में एक विशाल मेला लगता है.
There is a railway station called Tirupati on the southern railway.
दक्षिणी रेलवे पर तिरुपति नामक रेलवे स्टेशन है. तो श्रीला प्रभुपाद अक्सर आप देखेंगे तात्पर्य में रेलवे स्टेशन का.
So that pilgrims can find these places of pilgrimage in the Chaitanya Charitamrita.
पूरी चैतन्य चरित्रामृत में प्रभुपाद तात्पर्य में जो रेलवे स्टेशन है उनके नाम भी लिखते हैं ताकि जो तीर्थ यात्री हैं अगर वहां जाना चाहे जाए
निम्न निम्न चुरुपरे सो दैट्स द सिटी यू नो इज लोकेटेड इन द वैली ऑफ विकाटा हिल डाउन एट द बॉटम ऑफ द वॉल
निम्न तिरुपति वेंकट पर्वत की घाटी पर स्थित है
देयर आर सेवरल टेंपल्स देयर आल्सो अमंग व्हिच आर दोस ऑफ गोविंदराज एंड लॉर्ड
वहाँ भी अनेक मंदिर हैं जिनमें गोविंद राज तथा भगवान रामचंद्र के मंदिर हैं। निश्चित रूप से जब शिला प्रॉपर ये तात्पर्य लिख रहे थे जो हमारे स्कॉन का वर्तमान मंदिर है तब वो वहां पर नहीं था वो मंदिर गोविंद राधा गोविंद मंदिर स्वरूप दामोदर महाराज ने 1980 के दशक में वहां पर उसकी स्थापना किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी
श्री ग्रंथ राज श्री चैतन्य चरितामृत की जय श्री गुरु श्री बाबा की जय श्री शिव भगवान की जय
सोलह भक्ति माधुरी गोस्वामी महाराज की।